तो हम शाम को फिर भुवनेश्वर पहुंचे। तो भुवनेश्वर की कथा ऐसी है, हाँ सब लोग ठीक है ना, बताओ ना कहानी। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भुवनेश्वर में कथा ऐसी है कि आप अगर सत्ययुग में जाएंगे तो सत्ययुग में सती, जो बाद में पार्वती बनी अगले जन्म में, वो पहले सती थी, दक्ष राजा की कन्या थी वो, और दक्ष राजा की 11 कन्याएं थी, और स्वयं बहुत पावरफुल प्रजापति थे, ब्रह्मा के पुत्र थे वो, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत गर्व था उनको अपनी शक्ति पर, बड़े पावरफुल व्यक्ति थे वो, उनका प्रजा उत्पादन करने का उनका काम था। उनको 11 कन्याएं हुई, उसमें से एक थी सती, और बाकी कन्याओं में से एक अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया, ऐसे सभी ऋषियों के साथ विवाह हुआ, एकदम योग्य ऋषियों के साथ, सप्तऋषि भी उसके अंदर हैं, एक एक करके एक एक कन्या का ऋषियों के साथ में विवाह हुआ। लेकिन सती ने पिताजी के इच्छा के खिलाफ शंकर से विवाह किया, और राजा के हिसाब से शंकर तो कुछ भी नहीं है, वो तो महादेव अपने आप में बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन राजा को तो अपनी संपत्ति का गर्व था, उनको अपने बराबरी का जमाई चाहिए था, लेकिन ये तो राख लगा के बैठने वाले, जंगल में घूमने वाले, हाँ कोई घरदार नहीं कुछ नहीं, विरक्त में घूमने वाले, इनकी पूजा करती है शिव जी, उनको प्रसन्न करके शिव जी की शादी करते उनके साथ में, मतलब पिताजी के इच्छा के खिलाफ लड़की एक तरह से भाग के जाके शादी करती है, तो पिताजी को बोलते हैं लड़की मेरी लड़की नहीं, इसके आगे ये गिनती में नहीं हमारी, 10 ही गिनती में, 11 भी नहीं हमारी, और जमाई का तो बहुत ज़्यादा घृणा करते थे वो, ये तो बिल्कुल निकम्मा आदमी है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसके पास, शादी भी किया तो लड़के को भी जाके पेड़ के नीचे रखा, कोई घरदार नहीं, कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ सेवा नहीं, कुछ नहीं, तो हमारे साथ बैठने की योग्यता भी नहीं है, थे महादेव थे वो। तो एक घर में यज्ञ हुआ उनके, तो सबको आमंत्रण दिया जमाई को, ये लड़की को जमाई को आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन लड़की तो लड़की होती है, उसको पापा का घर में उत्सव हो रहा है तो उसको मन में इच्छा होने जाने के लिए, बहुत बहस करती है पति से, पति कहते देखो ऐसा है आपका वहाँ सम्मान नहीं होगा और आपको निमंत्रण भी नहीं है, मैं जानता हूँ। वो कहते नहीं मेरे पति का, मेरे पिताजी का घर है, उसमें निमंत्रण की जरूरत क्या है, इज़ माई फादर आई लव हिम आई मदर आई लव हर। तो कहते साहब बात तो सही है आपकी, लेकिन जिस तरह से आपके पिताजी का मुझसे व्यवहार है उस तरह से मुझे लगता है कि आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है, आपको बुरा अनुभव आएगा, फिर आपको क्रोध आएगा, फिर कुछ ना कुछ होगा, इससे अच्छा आप मत जाओ। लेकिन स्त्री का मन है वो बहुत ज़्यादा बार बार विनती करती है, फिर वो कहते हैं जाओ, लेकिन वो जानते हैं कुछ ना कुछ होने वाला है, तो अपने गणों को और अपने सब लोगों को भेजते हैं, उनका तो अलग टाइप का गैंग है ना पूरा उनको सब भेज देते हैं, वीरभद्र नाम के बड़े अपना बाल निकाल कर, एक बड़ा राक्षस नहीं है वैसा, मतलब एक पावरफुल व्यक्ति को, सिद्ध व्यक्ति को निर्माण करते हैं, तो जाओ मेरी पत्नी जा रही है उसकी रक्षा के लिए, तुम भी जाओ और देखो कुछ वहाँ पर आतंक नहीं होना चाहिए, कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए, इनको सुरक्षित रखो, कीप हर सेफ। इतना सब करने के बाद भी वो स्वयं भी बाद में जाते हैं जस्ट टू बी देयर, क्या हुआ कुछ तो मैं देखूँगा क्या हुआ। एनीवे तो बहुत लंबी कहानी है। तो वहाँ पर जाने के बाद वो शिव जी की बड़ी घृणा करते थे और निंदा करते थे कि तो ग्रहहीन धनहीन ऐसे व्यक्ति है। तो वहाँ जाकर नेचुरली जितना एक्सपेक्टेड था उतना पार्वती का अपमान होता है, न केवल पार्वती का होता है, पार्वती का अपमान के साथ साथ उसके पति का भी नाम लेकर अपराध करते हैं। तो पार्वती को रहा नहीं जाता है और शिवजी जब तक पहुंच जाते हैं तो शिवजी आने के बाद भी उसके पिताजी उनके सामने ही ताना, मतलब ऐसे बैठे हुए जमाई यहाँ पर, तो लड़की को बुरा भला कह रहे हैं और उसके पति का भी निंदा कर रहे हैं, मतलब पति यहाँ बैठे, जानते हैं वो पति बैठे हैं, जानबूझ के पति की भी निंदा की जा रही है। तो फिर पार्वती को रहाने जाता है, हमने सती को रहाने जाता है, वो सती कहती है कि तुम इतने वैष्णव निंदा करने वाले हो, वैष्णव का बुरा भला ही करने वाले हो, मैं तुम्हारे से जन्म प्राप्त कर चुकी हूँ, उसमें शर्मिंदा हूँ मैं कि ये शरीर तुमसे प्राप्त हुआ है, तुम इतने बड़े अपराधी व्यक्ति हो, महादेव की महिमा नहीं जानते तुम, उनको आहुति अर्पण करने के बदले में, यज्ञ में यज्ञ आहुति स्वीकार करने के लिए निमंत्रण देने के बदले में तुम उनकी निंदा कर रहे हो, वो तो शांत बैठे हुए और तुम बोलते जा रहे हो, तो मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, ये शरीर तुमसे प्राप्त किया हुआ है, मैं शरीर को त्याग करना चाहती हूँ, एक मिनट भी मुझे तुम्हारे दिए हुए शरीर में और जिंदगी चलाने की इच्छा नहीं है, वो तो सती थी, वो तुरंत बैठ गई। वो उसने ऐसे मंत्र पुकारे कि शरीर से अग्नि तत्व प्रज्वलित हो गया, सबके सामने वो जलकर राख हो गई। अभी आप देखो ना, अभी यज्ञ होने वाला था, अचानक सडनली क्या हो गया ये। तो उतने में फिर वो उसके जो गण थे भगवान के और जो वीरभद्र था, वो बहुत इतने भगवान इतने क्रोधित हो गए, वो उन्होंने वहाँ पर आतंक कर दिया पूरा, बहुत आतंक, सबका सर वर काट दिया, जितने भी लोग आए सबका सर काट दिया, और राजा का भी सर काट दिया, प्रजापति का, दक्ष राजा का। फिर सब ब्रह्मा सब भाग भाग के आए, अरे बाप रे, इतना बड़ा भयंकर आतंक हो गया शिवजी के अपराध की वजह से। तो सब शिवजी के पास में आए, शिवजी का विनती किया, स्तुति किया, गौरव किया, उनको शांत कर दिया। अभी फिर दोबारा यज्ञ होगा, अभी आप प्रजापति को कैसे भी करके जीवन दिला दो। तो उसको बकरे का सर लगाते, बकरे का क्यों लगाया? घोड़ा भी था अवेलेबल, हाँ सिंह भी था और हाथी भी था, क्योंकि बकरा ये जो योनि है ना भगवान ने बनाई हुई, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यू नो देयर इज नो सिग्निफिकेंस, देयर इज नो रिस्पेक्ट, नो डिग्निटी, ऐसे शास्त्र में लिखा है। कि मतलब इतना घमंडी व्यक्ति था वो, इतने बल से, शक्ति से, प्रभाव से, अधिकार से, तो उसको ऐसा सर लगाया कि उसका कोई कीमत ही ना रहे। इसलिए उसका ट्रांसप्लांट किया गया, हेड ट्रांसप्लांट बकरी के द्वारा। तो फिर वो जीवित हो गया, जब बकरी का सर प्राप्त हुआ तो सारा घमंड नष्ट हो गया उसका। वही शिवजी के पास, जमाई के पास आया और दंडवत प्रणाम किया, उसके पैर धोए, माफ़ी मांगी, बोले प्लीज़ अभी हम आपको निमंत्रण देते हैं, क्योंकि आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी भी समझाते हैं, फिर यज्ञ संसिद्ध हो जाता है, लेकिन पार्वती सती देवी तो गई। तो ये शिव जी जो जानते थे कि मेरे जम पिता फादर इन लॉ ने, ससुर जी ने मेरा बहुत अपमान किया है, और वो मान भी देते नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने काशी बनवाई, काशी है ना वाराणसी, वरुणा और असी दो नदी के किनारे में वो शहर बसाया, और इतने सारे महल बनाए उसके अंदर, इतने बगीचे बनाए, इतने सुंदर, मतलब इतना ऐश्वर्य तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, और इंद्र के पास भी नहीं है, किसी देवता के पास भी नहीं है, ना प्रजापति दक्ष के पास भी है। इतना सुंदर ऐश्वर्यपूर्ण काशी बनाया उन्होंने, और खुद वहाँ रहने लगे, ताकि बार बार वो बेचारे अपराध नहीं करते रहे, उनके लिए अच्छा नहीं है वो अपराध करना। यथावकाश ये सब समय बीत गया, आगे जाकर सती ने दोबारा जन्म लिया पार्वती के रूप में, हिमालय की पुत्री के रूप में, हिमालय और मेनका दोनों की पुत्री के रूप में जन्म लिया, फिर दोबारा तपस्या किया, और फिर दोबारा शिव जी से विवाह किया उसने, क्योंकि वो तो उनके प्राणनाथ थे, वो तो जन्म जन्मांतर तक उनके प्राणनाथ रहेंगे। तो पार्वती के रूप में आई, वो पर्वत की कन्या के रूप में पार्वती। बहुत समय बीत गया, उसके बाद में जो काशी का राज्य था शिवजी ने राजाओं को दिया, मतलब क्षत्रियों को दिया चलाने के लिए, वो तो भजन करने वाले भगवान के भक्त हैं, वो थोड़े राजदरबार चलाएंगे, है सब उनका, लेकिन चलाने को दे दिया। तो उनके वंशज जो है वो कलयुग में, अपने द्वापर युग में आए, और उसमें एक था पौंड्रक। जब कृष्ण भगवान अवतार लेकर आए द्वापर में, तो एक पौंड्रक नाम का एक विचित्र व्यक्ति आया उसमें। उसको बीच में एक बार बहुत डिप्रेशन आया किसी कारण, जीवन तो बहुत बड़ा दुखी दुख से भरा हुआ है। तो फिर उसको बहलाने के लिए उसके दोस्तों ने बताया, तुम तो भगवान हो, ऐसा करके चढ़ाया उसको, बहुत उसको उत्साह दिलाने के लिए, और उसको भी उत्साह आया, उसका डिप्रेशन चला गया, और उसको बाद में इतना चढ़ाया लोगों ने मिलकर कि उसको लगने लगा कि मैं वाकई में भगवान हूँ, वासुदेव कृष्ण मैं ही हूँ, और दो आप अलग हाथ भी लगा लिए अपने हाथ में उसने, सुन रहे आप लोग सब लोग, दो और हाथ लगा लिए और चार हाथ बना लिए, और चक्र शंख पद्म गदा धारण किया उसने, और दरबार में ऐसे बैठा था वो विष्णु बनकर। एक दिन उसको लगा, अरे एक और व्यक्ति वहाँ पर वासुदेव के रूप में द्वारका में रहता है। तो उसको वो लेटर भेजते हैं, ऑफिशियल लेटर, कि तुम नकली वासुदेव कृष्ण हो, तुमने मेरे शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हैं, उसको तुरंत निछावर कर दो, हाँ सरेंडर इमीजिएटली, नहीं तो मैं आक्रमण करूंगा द्वारका पर और सब ये छीन लूंगा तुमसे। से बड़ा पत्र भेजा उसने, वो पत्र दूत ने आकर द्वारका में पढ़ा। तो जब ये पत्र पढ़ा तो भगवान कृष्ण, उसके सारे जो मंत्रीगण थे, वो पेट पकड़ पकड़ के जोर जोर से हंसे, और बोलते कोई बात नहीं, हम उसका जवाब भी देंगे। और बोलते कि यस, मैं मानता हूँ कि तुम ही विष्णु हो और मैं, और युद्ध में आप जब आओगे तो मैं शरणागत होकर आपके ये चार चिन्ह जो है वो लौटाने के लिए आऊँगा। ऐसा बोलते भगवान उसको, और युद्ध के लिए आता है वो आक्रमण का द्वारका में करके, तो भगवान चक्र भेजकर उसका सर काट देते हैं। ओके, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं उसको, ढोंगी था ना, वो ढोंगी भगवान था वो। तो ये ऐसे भगवान, ढोंगी भगवान बहुत इंडिया में हैं, कम से कम 350 हैं बाय द वे। और हर एक जो भगवान है वो ये कहता है कि बाकी 349 जो है वो बोगस है, ये भी एक विशेष बात है। समझ में आपको आया? जितने लोग क्लेम करते हैं कि हम विष्णु हैं, भगवान हैं, वो बाकी जो जितने कर रहे हैं क्लेम, उनको बोल रहे हैं कि ये सब बोगस है, मैं इसमें सच हूँ। सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ही वो था, और भगवान ने उसका समय पर उसको नष्ट करके बता दिया कि ऐसे ढोंगी भगवानों को स्थान देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जनता को बहलाते हैं, वो उसको मार्ग भ्रष्ट कर देते हैं अपने ढोंग से, जिनसे बचना चाहिए। इसलिए भगवान क्या है इसकी जानकारी करनी चाहिए, भगवान कौन है, उनको कैसे पहचानना है। किसी अरे करे को कल मैं बोलूँगा, मैं 10 साल के बाद दाढ़ी बड़ी बड़ा को बोलूँगा मैं भगवान हूँ, आप बोले हाँ प्रभु जी ने कितना कथा किया हमारे लिए, राधे श्याम सीताराम। ओके ओके, बैठ जाए, कोई बात नहीं, ठीक। तो वो अगर गिर भी जाएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, एक बाल भी बाका नहीं होगा, चिंता मत करना उसकी। ओके, उसके पीछे एक पत्थर रखना चाहिए, वो जो टेढ़ा हो गया ना उसको सही करो पहले। हाँ बस, दैट्स इट। एनीवेज, तो क्या कह रहा था मैं आपको, तो ऐसे ढोंगी भगवान से बचने के लिए भगवान क्या है उसके बारे में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम शादी करने के लिए जब सोना बनाना चाहते हैं लड़की के लिए, तो पहला सोना कहाँ मिलता है, असली किधर मिलता है, सही में कौन बनाता है, असली दाम में कौन बेचता है, उसका पूरा पता करते हैं और फिर मार्केट में जाते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा पैसा लेके मार्केट में आके जो चमकता हुआ दिखता है पीला रंग का सब खरीद लेते हैं उसको। तो अपने व्यवहार में हम लोग इतने कुशल रहते हैं, तो भगवान के विषय में इतने अकुशल क्यों हैं हम? अर्जुन भी पूछते हैं कि आप भगवान हो, उसका प्रूफ क्या है, मतलब वो तो लीला है भगवान की। तो उनको विराट रूप दिखाते हो, क्यों दिखाया विराट रूप उन्होंने? इसलिए दिखाया कि आगे जाकर आपको कोई बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, तो उनको बोलना चाहिए आपका विराट रूप दिखाइए। अगर दिखा नहीं पाएगा तो भगवान कैसा है वो? जो भगवान थे उन्होंने दिखाया, आप अगर भगवान बोल रहे हो तो आप दिखाओ, नहीं तो बकवास मत करो। आप हमारे जैसे जीव हो, भजन करो भगवान का, भगवान की प्राप्ति करो बस। तो इसलिए भगवान ने उसको, लेकिन जब पौंड्रक का वध किया तो पौंड्रक के साथ साथ उसको बहकाने वाले दोस्त लोग भी आए थे, उसमें एक था काशीराज जो काशी का उस समय का राजा था, वो भी भगवान का बड़ा द्वेष करता था, तो भी उसके साथ में भगवान का अपना जो शत्रुत्व है उसको निभाने के लिए आया था उधर, बहुत सारे लोग आए थे। तो भगवान ने काशीराज का भी वध कर दिया। अच्छा बाय द वे, जब काशीराज निकला था युद्ध करने के लिए, तो अपने काशी राज्य में बहुत बड़ा उसने घोषणा किया था कि मैं युद्ध में जा रहा हूं, जब आऊंगा तो वह द्वारकाधीश कृष्ण का सर लेके आऊंगा आपके भेंट के लिए, और आप सब देख सकते हो कि मैं कैसे पराक्रम करता हूं, उस काफिर कृष्ण का मैं सर लेकर द्वारकाशी में लौटूंगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, जब काशीराज को मारा तो उसको ऐसा बाण मारा, ये जानते हुए कि ऐसे उसने घोषणा किया है, उस बाण को ऐसा मारा कि बाण सर काट के सीधा सर को लेके काशी लेके गया, और काशी में वो अलंकार से कुंडल पहना हुआ, मुकुट पहना हुआ सर जो है वो काशी में बाण के साथ गिरा, काशी के एंट्रेंस पे। सब लोग भाग भाग किया है, राजा ने जो कहा था वो वादा पूरा किया, देखो देखो सर, वो देखो कृष्ण का सर गिर गया आके। सब लोग भाग के आते देखने के लिए, क्या देखते हैं, धीरे पास जाके देखते हैं तो देखते हैं कि ये तो हमारे राजा का सर है। तो बड़े दुखी हो जाते हैं वो, और जाके उसका लड़का जो है सुदक्षिण, क्योंकि काशीराज को इतना गर्व था कि बेटा बोलता है मैं भी आता हूँ, बोला कोई बात नहीं बेटा, तो आराम कर, मैं हूँ ना, मैं सर लेके आता हूँ ना, उसको चिंता करते कि हो। तो ये बात लड़के तक पहुंच गई सुदक्षिण, सुदक्षिण बड़ा क्रोध में आ गया, मेरे पिताजी का वध का बदला लूंगा। तो शिवजी में बड़ी श्रद्धा थी, वो काशीवासी है ना, वो वाराणसी वासी है। तो उसने सब तांत्रिकों को बुलाया, मांत्रिकों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सबको बुलाया, बोला ऐसा यज्ञ करो जिससे मैं शिव जी को प्रसन्न करूँ। तो बैठ गया तपस्या में, बड़ी कड़ी तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न कर दिया। शिव जी प्रकट हो गए, बोले क्या चाहते हो? बोलते हैं शत्रु को मारने का बल दीजिए मुझे, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं मेरे शत्रु को नष्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं बताया कि मुझे कृष्ण को मारना है। तो शंकर भगवान ने क्या किया, उनको बताया कि एक सब विधि का वर्णन किया पूरा, कि कैसे तांत्रिक विधि करना है आपको, क्या क्या होम करने हैं उसके अंदर, पूरा डिटेल में समझाया। और कहते हैं कि ये यज्ञ करने के बाद में एक ऐसा महान व्यक्ति राक्षस के रूप में पैदा होगा और वो आप जिसको बोलेगा उसको मार के आएगा, और जब ये पैदा होगा तो मैं भी मेरे गणों को सेना के रूप में भेज दूंगा आपकी सहायता करने के लिए। तो फिर वो दोबारा यज्ञ करता है तांत्रिकों को बुलाकर, हाँ, और बहुत भयंकर हो, रिम ग्लिम धुम धाम धुम, बहुत भयंकर होता है वो यज्ञ, बहुत करके इतना वो उसका मोटिवेशन फिक्स है ना कि कृष्ण को मारना है मुझे। तो यथावकाश उस यज्ञ से एक भयंकर राक्षस पैदा होता है, उसका वर्णन भी किया भागवत में, ऐसा पूरा लाल आँखें उसकी, लाल बाल उसके, आँख के गोले जैसी उसकी आँखें, और लाल लाल जबान उसकी, और हाथ में त्रिशूल, और नंगा पूरा, इतना पहाड़ जैसा ऊंचा, लोगों की ऊंचाई से 100 गुना ऊंचा, सब भयंकर रूप से वो प्रकट हो गया। महाराज क्या आज्ञा है? बोले द्वारका में जाओ और कृष्ण का वध करो और द्वारका को नष्ट कर दो पूरा। तो वो गया और जयशंकर जी ने वादा किया था, उनके गण भी गए उसके पीछे, भूत प्रेत सब, और जाकर उन्होंने द्वारका में आतंक बनाना शुरू कर दिया। हम जानते हैं ना अभी ये सब जो राक्षस वगैरह सब आए, तो वो जलाने लगा द्वारका को, आग लगाने लगा, चलो ताई ताई करके भाग भाग के द्वारका के भगवान के महल में चले गए। तब भगवान रुक्मिणी के साथ रुक्मिणी के महल में बैठकर सारी पाठ खेल रहे थे, चौसर का खेल खेल रहे थे। लोग रोते रहते आए, भगवान द्वारकाधीश महाराज त्राही माम त्राही माम। बोले क्या हो गया? तो वर्णन किया उन्होंने, कैसा भयंकर राक्षस शहर में आया है, वो सब जगह आतंक कर रहा है, हमारा जीना हराम कर दिया, सबको मार देगा वो। तो भगवान शांति से हंसते हैं, बोलते डोंट वरी, निश्चिंत रहो, इसका उपाय किया जाएगा। तुरंत चक्र को आह्वान करते हैं, सुदर्शन चक्र वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनको भगवान आदेश देते हैं, समझाते हैं कैसे कैसे अटैक करना है, और भगवान फिर अपना वापस चौसर खेलना आरम्भ करते हैं। चक्र जाते हैं और चक्र के बीच में उसमें बहुत युद्ध होता है, और चक्र उसको काट देते हैं, बाय द वे चक्र नहीं काटते उसको, सॉरी, चक्र क्या करते हैं, चक्र एक अस्त्र उस पर भेजते हैं। अभी चक्र भी एक व्यक्ति है बाय द वे, वो डिस्क के फॉर्म में है लेकिन वो पर्सनैलिटी है। तो वो जब युद्ध करते हैं तो वो तो अग्नि के रूप में आता है ना, वो राक्षस पूरा जलाने के भाव से आता है, त्रिशूल लेकर जला रहा है सबको। तो वो क्या करते हैं, एक निहारी का अस्त्र भेजते हैं ऊपर। वो निहारी का अस्त्र का मतलब क्या होता है, वो सब ठंडा कर देता है, कोल्ड कर देता है। तो उससे क्या होता है, उस राक्षस का जो शक्ति है वो एकदम नष्ट जैसा लगता है, वो एकदम गलित गात्र अनुभव करता है अपने आप को। ही फील्स लाइक इज एग्जॉस्टेड, इज कोल्ड, ही कांट डू एनीथिंग। तो वो डर के मारे भागता है। अभी तांत्रिक कार्यों का एक काम होता है, अगर आपने कुछ मंत्र बोले, समझो मैंने कुछ तांत्रिक यज्ञ किया आपके खिलाफ, तो वो आपके खिलाफ कुछ कार्य करेगा, आपको बीमार पड़ेगा, आपको बुखार आएगा वगैरह वगैरह, जो भी कुछ, एक बहुत ख़राब विद्या है ब्लैक मैजिक। अगर वो आपके ऊपर सफल नहीं हो पाया तो फिर वो लौट के आके जिसने उसको निर्माण किया है उसको नष्ट कर देता है, ये उसका एक साइड इफेक्ट है। अगर आपके काम में वो सफल नहीं हुआ तो जिसने मंत्र बोल के यज्ञ करके उसको निर्माण किया है उसी को जाके वो नष्ट कर देता है। तो ये वापस गया और उसने सुदक्षिण और सारे ब्राह्मणों को तांत्रिकों को मार दिया उसने। फिर चक्र उसके पीछे पीछे आए और चक्र ने उसको भी मार दिया। और उसके बाद में चक्र ने क्या किया कि शिवजी ने अपने गणों को भी भेजा था साथ में, उनको भी मार दिया उसने, और शिवजी का पूरा राज्य जो है काशी उसको जलाकर भस्म कर दिया। ऐसा है भगवान का अस्त्र, हाँ, सावधान रहिए सब लोग। भगवान का अस्त्र जो है वो भक्ति देने वाला है, सुदर्शन, जिसको देखकर आपका दर्शन सफल होकर आपको भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन अगर गलत काम करेंगे तो उसका असर ऐसे भी होगा। सुदक्षिण को मार दिया, ब्राह्मणों को मार दिया, गणों को मार दिया और काशी को जलाकर भस्म कर दिया। तब शिव जी को बहुत पश्चाताप हुआ। तो शिव जी, एक जगह लिखा है कि चक्र शिव जी के पीछे भी लग गया। भागवत में लिखा है कि वो नहीं लगा, लेकिन शिव जी खुद ही पश्चाताप करके भगवान के चरणों में आए। लेकिन दूसरी जगह लिखा है कि वो चक्र सब कुछ जला बिला के बाद में शिव जी के पीछे लग गया। तो शिव जी भाग भाग के पूरी जगह भागे, कहीं वो चक्र से मुक्ति नहीं पा पाए। फिर उन्होंने समझा कि भगवान के चरणों में आश्रय लेंगे तो ही चक्र से बच सकते हैं। तो भगवान के चरणों में आके वो गिड़गिड़ाए तो चक्र फिर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने आपके खिलाफ सैनिक भेजे और मैं आपका संग चाहता हूँ, तो आपके संग में रहूँगा तो मैं मेरी मति शुद्ध। अफकोर्स लीला है भगवान की, शिव जी तो बड़े महादेव भगवान हैं। वो भगवान को उनको यहाँ पर निवास देने का इच्छा था तो लीला किया उन्होंने। तो भगवान ने कहा कि आपके लिए मैंने एक सुंदर वन बना के रखा है, उसका नाम है एकाम्र वन। वो एकाम्र वन जो है वो जगन्नाथपुरी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के बगल में है, जहाँ पर मैं रहता हूँ श्री पुरुषोत्तम के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में। और वो क्षेत्र जो है वो त्रिगुणों से परे हैं, जन्म मृत्यु का उसमें निवास नहीं है। जो भी वहाँ रहता है वो चतुर्भुज वैकुंठवासी के रूप में वहाँ पर रहता है और प्रलय काल में वो नष्ट नहीं होता है। और ब्रह्मा शिव, शिव ब्रह्मा आप और यमराज का भी वहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मेरा दिव्य धाम है वो, जहाँ पर मैं निरंतर निवास करता हूँ लक्ष्मी जी के साथ। उसी के किनारे लगकर एकाम्र वन है, वो बहुत सुंदर है, बहुत वनों से और समृद्ध से समृद्ध है। आप वहाँ जाकर निवास करो। तो फिर शिव जी यहाँ पर आए, ये जो भुवनेश्वर है यही एकाम्र वन है। और यहाँ पर शिव जी आके रुके। फिर भगवान ने शिव जी को वरदान दिए कि आप केवल निवास नहीं करोगे, मेरे धाम में मेरे दर्शन के हेतु आने के वाले लोग जो हैं वो पहले आपके पास आएंगे, आपकी सेवा पूजा करेंगे और फिर मेरे पास आएंगे और आपकी कृपा से ही उनको मेरे दर्शन होंगे, ये भी बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मुझे जो भूख लगेगा वो महाप्रसाद भी आपको आके चढ़ाया जाएगा। तो आप न केवल मेरा संग करोगे, मेरा प्रसाद भी पाओगे, मेरे भक्तों का भी संग करेंगे, मैंने आपको वरदान भी दिया, उनकी सेवा भी आप करोगे। इस तरह से भुवनेश्वर लिंगराज महादेव यहाँ पर विराजमान हुए। तो ये जगह बहुत पावरफुल जगह है। इस जगह पर शिव जी का अभिषेक करते हैं उसी जल से करते हैं जो भगवान का अभिषेक हुआ है, वही भोग लगाते हैं उनको। बड़ी लीला है उनकी यहाँ पर। यहाँ पर एक बिंदु सरोवर भी है। वो बिंदु सरोवर ऐसा है कि पार्वती देवी ने दो राक्षसों का वध किया, उसके बाद पार्वती थक गई, उनको बड़ी प्यास लग गई, तो शिव जी ने तुरंत एक यहाँ के पहाड़ पर त्रिशूल मारकर जल उत्पन्न किया। तो शिव जी ने कहा कि पार्वती ने कहा कि मैं ऐसा साधारण जल से मेरी प्यास नहीं बुझाऊंगी, मेरे लिए ऐसा कुंड बनाओ जो यज्ञ द्वारा स्थापित किया हो। तो यज्ञ द्वारा स्थापित किया हो और उसके अंदर विश्व के सभी पवित्र सरोवरों का, कुंडों का, नदियों का जल हो और वो सही ढंग से जब आप बनाओगे तो उसका जल मैं पीऊंगी और मेरी प्यास को बुझाऊंगी। तो एक तो बन गया, वो वैसे रह गया। फिर शिवजी ने सभी ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया, सभी देवताओं को इकट्ठा किया और एक एक को विश्व के एक एक पवित्र स्थान पर भेज दिया और वहाँ से जल लाकर यहाँ पर उन्होंने एक कुंड बनाया। वापस त्रिशूल से पहाड़ पर आगाज किया और एक विशाल कुंड बनाया और सभी ऋषि मुनियों को बुलाया और देवताओं को बताया, जो भी सब लेके आए थे, अपना एक एक बूंद यहाँ पर आप डालो। तो सब लोग एक एक बिंदु अपने जल से उस जल में समर्पित करते हैं, बड़ा यज्ञ होता है और उस कुंड को स्थापन किया जाता है। उसके बाद में वो जल शिव जी पार्वती को मिलाते हैं, तो उसका नाम क्या है, बिंदु सरोवर। इसी बिंदु सरोवर के किनारे कर्दम मुनि ने तपस्या किया था और कर्दम मुनि को भगवान ने जो दर्शन दिया तो कर्दम मुनि के भाव, भक्ति भाव को देखकर भगवान इतने प्रभावित हुए कि भगवान के आंखों से आंसू आए और वो आंसू भी उस बिंदु सरोवर में गिरे हुए हैं। ऐसा एक महान बिंदु सरोवर यहाँ पर उपस्थित है। कल हम जा नहीं पाए लेट होने की वजह से। वो कहते हैं कि मंदिर के पास ही है बिल्कुल वो बिंदु सरोवर, तो आप सब लोग यहीं बैठकर हाथ जोड़कर बिंदु सरोवर को प्रणाम कीजिए और प्रार्थना कीजिए, मन से उसमें आचमन कीजिए, स्नान कीजिए मन से। और प्रार्थना कीजिए कि हम पर भक्ति की कृपा करें। उस उम्र प्रार्थना करने वाला, आचमन करने वाला, स्नान करने वाला जो जीव है उसको शिव जी द्वारा भगवान कृष्ण की या विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाती है और उस जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त होता है, ऐसा उस बिंदु सरोवर का महात्म्य है। तो ये दो स्थानों का वर्णन आपने हमने किया आपके लिए, भुवनेश्वर लिंगराज महादेव और बिंदु सरोवर, और बाकी ऐसे यहाँ पर बहुत स्थान हैं, विशेष करके सरोवर बने हुए हैं बहुत सारे। एक पापनाशिनी कुंड है यहाँ पर। तो मैंने सब जितने कुंडों का वर्णन पढ़ा उसमें से एक समान चीज़ मुझे नज़र आई कि हर एक कुंड का दर्शन करने से भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे एक कॉमन लाइन मैंने सब में देखी। तो आप भुवनेश्वर धाम में आए हो, यहाँ की हवा, यहाँ का जल, यहाँ का भोजन ले रहे हो, तो आप सब लोग दिल से भुवनेश्वर महादेव शंकर जी को प्रणाम कीजिए। शिव जी की महिमा अगाध है, ऐसा वर्णन आता है कि शिव जी न जीव तत्व है न विष्णु तत्व है, शिव जी विशेष जीव हैं जो कभी अनंत शेष के द्वारा निर्माण होता है उनका, कभी ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण होता है, तो कभी साक्षात विष्णु के द्वारा उनका निर्माण होता है। अलग अलग कल्पों में, अलग अलग जन्मों में, अलग लीला में वो अनंत शेष बलराम जी, विष्णु या ब्रह्मा, इनके शीश से उनका जन्म होता है। और उनका इतना पावर है कि ब्रह्मा उनके एक तरह से पिता हैं, लेकिन ब्रह्मा भी उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो महादेव हैं, उनके इतने महान देवता और कोई नहीं है। और वो बद्ध जीवों को हमारे जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति दिला सकते हैं, और कई लोगों को उन्हें भगवान की भक्ति दी है जिन्होंने मांगी है, नहीं मांगी है उनके बहुत सारे भक्त जो है राक्षस होते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं उनसे, फिर कृष्ण को उनका वध करना पड़ता है उसके बाद में। जैसे रावण है, हाँ, भस्मासुर है, कई प्रकार के राक्षस हैं। तो शिव जी महाराज भक्ति को देने वाले हैं। वैष्णवायान वैष्णवानान यथा शंभु, इसलिए वैष्णवों को आदेश दिया गया है कि वो शिव जी के पास कोई भौतिक कामना लेकर देवता के रूप में मत जाए। वो आदेश दिया गया है कि वैष्णवों को जो भगवान के नाम का जप करने वाले हैं उनको शिव जी के पास एक वैष्णव, महान वैष्णव के रूप में उनका दर्शन करने जाना चाहिए, तब जाकर एक वैष्णव जो वरदान देता है भक्ति का वो आपको मिलेगा। अगर हम कोई सुंदर पत्नी मिलनी चाहिए, सुंदर पति मिलना चाहिए और ये होना चाहिए, नृत्य कला में निपुण होना चाहिए, तो आपको वो लाभ मिलेगा। एक वैष्णव के रूप में आप उनके पास जाएंगे तो जो वैष्णव देते हैं वो वरदान आपको मिलेगा। ये सब रहस्य की बातें हैं, बहुत ज़रूरी है, हमको सिखाते हैं कि भगवान को जाके ये मांगो, वो मांगो, ये मांगो, लेकिन वैष्णव धर्म में सिखाते हैं कि केवल भगवान के पास जाके भक्ति मांगनी चाहिए। तो शंकर भगवान बड़े भक्ति प्रदाता हैं, सब लोग प्रणाम करो उनको, और इस तरह से आपकी यात्रा यहाँ पर संपन्न होती है। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है।